This is a Suno India production and you're listening to the Suno India Show.
नमस्कार, मैं हूं काम्या पांडे, आपकी होस्ट, और आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम कोविड टीकाकरण से जुड़े कई मुद्दों, जैसे कि टीका क्यों लगवाना जरूरी है, उसके इफेक्ट्स एवं साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और टीकाकरण के इर्द गिर्द फैली गलत फहमियों पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देश भर में कोविड महामारी की दूसरी लहर देखी, जो कि पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है, और इसमें जो मौत का आंकड़ा है वो भी कई गुना ज्यादा है पहली लहर से। इस लहर में पहली लहर की तुलना में 18 से 44 की उम्र के लोगों को भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए देखा गया है। हमारे देश में कोविड की वैक्सीन को लेके आज भी लोगों में बहुत गलत अवधारणाएं हैं, जिसके चलते वो वैक्सीन लगाने में हिचक रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ लोगों को पूरी या आंशिक तौर पर कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। लोकल सर्कल्स, एक कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार 62% भारतीय नागरिकों के पास कोविड के वैक्सीन से संबंधित पर्याप्त जानकारी नहीं है। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि टीकाकरण में जो कमी देखी जा रही है वो सिर्फ टीकों के अभाव के कारण नहीं, बल्कि उनके चारों ओर फैली गलत फहमियों का नतीजा भी है। ऐसी ही गलत फहमियों को दूर करने के लिए हम जन स्वास्थ्य अभियान छत्तीसगढ़ के साथ जुड़कर ये पॉडकास्ट आप तक लाए हैं। ये पॉडकास्ट जन स्वास्थ्य अभियान, ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क और भारतीय ज्ञान विज्ञान समिट द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव का ही एक भाग है, जिसे इस पॉडकास्ट के रूप में आप सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में आप जन स्वास्थ्य अभियान की संयोजक सुलक्षणा नंदी और उनकी सहकर्मी दीपिका को डॉक्टर टी सुंदर रमन, जो कि जन स्वास्थ्य अभियान के वैश्विक कोऑर्डिनेटर हैं, से बात करते सुनेंगे। डॉक्टर टी सुंदर रमन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम्स के डीन रह चुके हैं और नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
तो ये कोविड टीकाकरण का क्या महत्व है के बारे में अगर थोड़ा सा आप बता पाए शुरू में, कि कोविड का टीका हमें क्यों लगाना चाहिए।
अब सब लोग को ये पता है कि कोविड-19 का एक बहुत बड़ा महामारी देश भर, दुनिया भर फैल गया है, और एक तरह से पूछो तो उन देशों में जहां नुकसान ज्यादा हुआ है उसमें भारत एक मुख्य देश है, क्योंकि यहाँ लाखों की मौत हुई है और करोड़ों इससे संक्रमित हुए हैं। इस संक्रमण से गंभीर बीमारी और मौत से बचने के लिए टीकाकरण सबसे बेहतर उपाय है। ये एक ही उपाय नहीं है, कई उपाय है, उसमें से एक है, लेकिन ये ऐसे उपाय है जो हम अपने आप को अपने हाथ में ले सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। बाकी उपाय में सारा समाज का भी भागीदारी की जरूरत पड़ता है और पढ़ने पर भी उतना निश्चित नहीं है जितना इसमें है। जो उपाय हमारे पास हैं, जो रास्ते हैं इससे बचने के लिए, उसमें से सबसे उचित आज जो है उसमें टीकाकरण है। संक्रमित होते हैं तो 80-90 लोग तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10-15 लोग इतना गंभीर बीमार हो जाते हैं कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है, उसकी कष्ट जो है, उसकी डर जो है, उसकी खर्च जो है, उससे पीड़ित होते हैं, और 100 जो संक्रमित होते हैं उसमें 2-3 की मौत हो जाती है। 100 में 2-3 कम लगता है, लेकिन अगर हम देखें कि करोड़ों लोग हैं तो 2 या 3 बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में सब संक्रमित हुए तो मान लो कि 3 करोड़ लोग संक्रमित हुए तो 1 या 2% 6 लाख लोग की मौत हो जाएगी, जो कि आज कुछ 10,000-20,000 में है। तो 1 या 2% कम नहीं होता है बीमारियों के लिए, जनसंख्या की 1 या 2% कम नहीं होता है, और इसीलिए बचने के लिए बहुत जरूरी है। बीमारी के बाद भी कितना दिन बीमार रहेंगे, बीमार तो एक हफ्ता रहते हैं, उसके बाद कितना दिन प्रतिरोधक शक्ति रहेगा, इम्यून स्ट्रेंथ रहेगा, इसका पता नहीं है, और इसीलिए भी ये टीकाकरण लगाने के लिए काफी जरूरी पड़ता है। इसमें और एक बात है, ये काफी नहीं है कि हम अपने आप को लगा लें और हम सुरक्षित हो गए, इससे बात खत्म नहीं है, उसकी शुरुआत है ये। मान लो हमने छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ में 2 करोड़ को टीका लगा दिया और 1 करोड़ को नहीं लगाया, तो ये जो कीटाणु है, वायरस कीटाणु रोगाणु जो है, वो बाकी 1 करोड़ में फैलता रहेगा, और फैलते समय उसमें थोड़ी थोड़ी करके बदलाव आते रहती है। आप कुछ फैलते फैलते बदलाव इतना दूर चले जा सकता है कि जो पहले इसके खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति पा गए थे या तो टीकाकरण से या संक्रमित होकर, अब वो प्रतिरोधक शक्ति नहीं बचाता है और दोबारा इन पर भी महामारी चलेगी। जब तक सब पर टीका नहीं लगा और ये बीमारी फैलने की समस्या ये सारे समाज से उठानी, तो जो टीका से टीकाकरण लगा लिए हैं वो भी बाद में, खैर अभी नहीं, अभी तुरंत नहीं, लेकिन बाद में फिर शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हम ये मांग रखे हैं और समाज का ये कार्यक्रम है कि टीकाकरण सबको लगे, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में बहुत जरूरी है।
एक जो प्रश्न कुछ लोगों ने पूछा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या कोविड हो सकता है, और उसमें अगर कोविड किसी को हो रहा है वैक्सीन लगाने के बाद, तो उसमें वैक्सीन ने क्या फिर सुरक्षा हमें दिया कोविड से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
एक तरह से हमें समझने की बात है कि वैक्सीन क्या करता है। वैक्सीन हमारे बदन में प्रतिरोधक शक्ति बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि जो वैक्सीन है वो उसमें कीटाणु का कुछ गुण है, कुछ हिस्से हैं, जिस हिस्से से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है लेकिन संक्रमण से जो दुष्प्रभाव होता है उससे बचाता है, ये इसकी खास बात है। अब हम कहते हैं कि एक वैक्सीन, और ज्यादातर आज जो हम यूज कर रहे हैं ये कोविशील्ड वैक्सीन, 78% इफेक्टिव है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम जनसंख्या में ये कीटाणु फैला, संक्रमण फैला, तो जितना लोग संक्रमित होते उसे 78% कम लोग संक्रमित होते अगर सबको टीका लगा रहा था। तो इसका मतलब है कि 22% को अब भी लग सकता है। तो ये हमें समझने की बात है कि हमारी ये कहना नहीं है कि टीकाकरण लगने से किसी को नहीं आएगा, लेकिन जितने लोग को आएगा उसका 22% को भी अब आएगा, बाकी जो 78% लोग हैं वो बच जाएंगे, और ये 22% लोग को भी बीमारी आएगा तो एकदम उसकी ताकत का बिना आएगा। इसलिए बुखार हो सकता है, कुछ समस्या हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी जिसके लिए हॉस्पिटल की भर्ती की चाहिए या जानलेवा बीमारी, उससे बच जाते हैं। लेकिन ये कम नहीं होता है, 22% को कैसे समझेंगे? जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ कई सारे लोग को, मान लो 15 करोड़ लोग को भारत में लगा है टीका, तो अगर टीका ना लगता तो उसका 20% आज करीब करीब 3 करोड़ लोग को बीमार हो जाते हैं। अब टीका लग गया तो 3 करोड़ को नहीं, 60 लाख को ही, करीब 66 लाख को ही ये बीमारी होगी। पहले में स्थिति कैसी थी कि हम देखें कि लाखों की मौत होती, अब क्या है कि किसी की मौत नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा आपको बीमारी एकदम सा नहीं चला जाता, लेकिन बहुत हानिकारक रूप में नहीं आता है।
तो दो जो प्रश्न जो थोड़े से जुड़े हुए हैं, और कि ये जो अलग अलग तरह के जो वैक्सीन हैं, कोविशील्ड हम सुनते हैं, कोवैक्सीन सुनते हैं, ये अलग हैं, और इन दोनों में क्या अंतर है, और इसमें कितना अंतराल में दोनों को लगाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि मतलब एक ही वैक्सीन 2 बार लगेगा या 2 अलग अलग लग सकते हैं वैक्सीन?
ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों कोविड के खिलाफ वैक्सीन है, लेकिन बनने की प्रक्रिया अलग है और बनने का तरीका अलग है, और इसीलिए वो दूसरी एक दूसरे से भिन्न तरह से काम करते हैं, लेकिन काम उतना ही करते हैं दोनों, और इसीलिए दोनों में कोई भी हम लगा सकते हैं। कोविशील्ड को लगाना और कोवैक्सीन को लगाना दो बार लगाना पड़ता है, और दूसरा बार लगाने के दो हफ्ते के बाद ही हम बोल सकते हैं कि जितना प्रतिरोधक शक्ति की उम्मीद था उतना बन गया है। इसीलिए एक डोज लगाने के बाद, एक बार सुई लगाने के बाद हो सकते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं, ज्यादातर उतना ही करीब, थोड़ा सा कम होता है लेकिन उतना ही जैसे पहले था। और थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जब टीका लग जाता है ना तो लोग को सोचने लगता है कि अभी चलो मैं थोड़ा घूम लूंगा, मास्क का बिना रह जाऊंगा। नहीं, आपको दो बार दोनों डोज लगना चाहिए, और दूसरा डोज के बाद दो तीन हफ्ते के बाद ही आपको सुरक्षा पूर्ण रूप में मिलता है, जितना इससे मिलना है वो मिलता है। अब कोविशील्ड में दो डोज के बीच अंतराल 6 हफ्ते के होते थे, आज उसे बढ़ाकर 12 हफ्ते में लगाने के लिए बोले हैं। 6 से 8 हफ्ता बोलते थे, अब 12 हफ्ता का अंतराल पहले डोज और दूसरा डोज का, यानी कि करीब करीब 3 महीना का अंतराल की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? ताकि वो प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बढ़िया, ज्यादातर ज्यादा मात्रा पे बनता है अगर थोड़ा अंतराल बढ़ाए। ये कैसी दो डोज काम करता है इसको हम समझने से हम ये भी समझ सकते हैं। थोड़ा हमारे लिए ये डर की बात भी है कि सरकार इसलिए तो नहीं बढ़ा दिया क्योंकि उसके पास डोज की कमी है, ये सच बात है, लेकिन उनके लिए ये अच्छा मौका निकल गया। लेकिन बात क्या है कि वैज्ञानिक रूप में भी 12 हफ्ता का अंतराल देना उचित है, तो कोविशील्ड के लिए पहले डोज और दूसरे डोज के बीच 12 हफ्ता का अंतराल। थोड़ा 1-2 हफ्ता पहला लग गया या 1-2 हफ्ता बाद लग गया तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बहुत ज्यादा बाद लग गया तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर मत दे, इतने में लगा ले। कोवैक्सीन में 1 महीना 4 हफ्ता का अंतराल, तो 4 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लगता है। अब एक चीज याद करना कि अगर पहला डोज कोविशील्ड से लगा तो दूसरा डोज कोवैक्सीन से लगाना उचित नहीं है, और आमतौर पर लगाते भी ऐसी नहीं है। लगाने से बुरा हुआ क्या, कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, इस पर जांच चलती है, इस पर बातें चलती है, लेकिन आज जहां तक की समझ बनी हुई है, आज हमें करने की जो बात है, अगर कोविशील्ड पहला डोज लगाए तो दूसरी बार भी कोविशील्ड लगाए, अगर कोवैक्सीन पहले डोज लगाए तो दूसरी बार भी आपको वैक्सीन ही लगाए।
अभी थोड़ा गांव में ये स्थिति बन रही है कि कई लोग जिन्होंने मार्च अप्रैल में पहला डोज लिया है तो अभी दूसरा डोज लेने में थोड़ा झिझक रहे हैं, क्योंकि बीच में मतलब गांव में किसी तरह की मौतें वगैरह हुई है तो उसमें उनको लग रहा है कि टीकाकरण की वजह से ऐसी मौतें हुई है, तो डर रहे हैं फिर टीका लगाने के लिए। तो इस तरह की चीजों को अपन गांव में कैसे डील कर सकते हैं, और टीकाकरण के बाद अगर मतलब हमारे पूरे देश, दुनिया भर में और देश भर में क्या आंकड़े हैं कि भाई टीकाकरण के बाद कितना, कितने लोगों को कितनी दिक्कतें होती है या कितनी मौतें होती है?
इसमें हमें देखने की बात मिलके आती है कि टीकाकरण से दुष्प्रभाव क्या हो सकता है और क्या मौत हो सकता है कि नहीं। ज्यादातर मौत की संभावना इतनी कम है कि करीब करीब है नहीं, अपने अनुभव में आप 1 या 2 भी नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ जो अगर 2 या 3 देख रहे हैं तो हमें सोचना है कि क्या बात है, और कुछ तो नहीं है, और है तो किस चीज पर है। 1 या 2 चीजें पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो है कि कई लोग, अगर हम बुजुर्ग लोग की बात करते हैं और 1 करोड़ लोग को हम लगाते हैं तो उनमें तो कुछ की मौत 1 साल में होगा ही, इसका बिना भी हो जाता है, और अगर सारे जनसंख्या में लगाएं तो ये टीका तो कोविड से ही बचाता है, बाकी मौत से नहीं बचाता है, और जो बाकी कारणों से मौत के होता है आज भी हो रहा है। अब कोई और गांव में देखे तो आपको मिलेगा 1-2 मौत तो हमको मिलता है, और ये मौत आप टीकाकरण के बाद हुआ ये दुख की बात है, लेकिन टीकाकरण के कारण हुआ ये अलग चीज है। इसका मतलब नहीं है कि दुष्प्रभाव नहीं है, 2 तरह की दुष्प्रभाव है। एक जो हल्का दुष्प्रभाव और एक जो हम बोलते हैं गंभीर दुष्प्रभाव। हल्का दुष्प्रभाव में ज्यादातर लोग को ये टीका लगने के बाद एक दिन के लिए बुखार आ जाता है, वो दो तीन दिन भी चला जा सकता है, बदन दर्द होता है, सिर दर्द होता है, थोड़ा सा हल्का सा खांसी हो सकता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा और दो तीन दिन में वो ठीक हो जाते हैं। आप पैरास्टामोल लिया तो बहुत ज्यादा उसे दर्द भी नहीं होता, किसी लोग को पैरास्टामोल लेने से भी दर्द होता है, ये होता है, ये हल्का दुष्प्रभाव। इसमें एक दुष्प्रभाव है जो टीका लगने के एक घंटे के अंदर होता है, वो जो हम बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी बहुत कई चीजें से होता है ना, किसी को मछली खाने से होता है, तो किसी को ओल खा जाने से होता है, किसी को कोई पाउडर लगाने से हो जाता है, और कभी कभी हम एलर्जी खाने से इतना जल्दी सांस की तकलीफ या ये भी हो जाता है ना, चक्कर आ जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि टीका लगाने के बाद एक आधा घंटा एक घंटा वहीं रहो, डॉक्टर के पास रहो, और अगर वहां कोई उस तरह की एलर्जी हुआ तो उसकी इलाज वहां तुरंत हो जाएगी। 1 लाख लोग में 3 या 4 लोग को इस तरह की दुष्प्रभाव भी होता है। लोगों को डर लगने लग जाता है, उनको सोचने को लगता है कि देखो अरे 3 या 4 हो तो हो सके मुझे हो जाए। तो ये सोच के देखिए, अगर आप मालाडी लेते जो आम तौर पर कई महिलाएं लेते हैं, एक तरह की साधारण दवाई है जो एएनएम देती है, तो आपको क्या बोले 1 लाख लोग में करीब 1000 लोग को हो सकता है समस्या, दुष्प्रभाव जो गंभीर दुष्प्रभाव 1 लाख लोग में 1000 लोग को हो सकता है, और इसमें 1 लाख लोग में 4 लोग को हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि हर दवाई इवन केवल पैरास्टामोल में, पैरास्टामोल भी खाने से कई लोग को लिवर का पीलिया पड़ सकता है, ज्यादातर लोग को नहीं पड़ता है लेकिन लाखों में एक को पड़ जाता है, और उन लोग के लिए पैरास्टामोल लेना बहुत खतरनाक है। इसलिए कोई भी आप दवाई देखे जो हम पैरास्टामोल तो हम सबको देते रहते हैं, कितने बार खा लिए होते हैं हम लोग, लेकिन है उसकी भी दुष्प्रभाव। इसीलिए ये कभी कभी ये हो जाता है कि कारण अगर हम रोके तो बहुत सारे चीजें हम नहीं कर पाते हैं, और इसकी सावधानियां चाहिए, लेकिन ये डरने की बात नहीं है। और जब हम लोग सोचते हैं तो ये बीमारी आ जाने से मौत की समस्या कितनी ज्यादा है और इससे कितना दूर ये बचाता है, तो इसका जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव से इतना ज्यादा है कि हम इसे लेने के लिए जरूरी।
छत्तीसगढ़ के गांव में बहुत सारा इस तरह का एक खबर रहा है कि इससे जो है इनफर्टिलिटी, मतलब उसके बाद वो पुरुष बच्चा नहीं पैदा कर सकता, तो आप इस पे जरा बताइए कि वैज्ञानिक तौर से इसका क्या उत्तर है।
ऐसी कोई बात है ही नहीं, लाखों में एक करोड़ों में भी एक ऐसे नहीं होता है। बात क्या है कि लोगों को जो सबसे ज्यादा डर लाता है उनका जो उसमें डर बना रहता है, लेकिन इस वैक्सीन से और वैसे भी ज्यादातर दवाइयों से भी इम्पोर्टेंसी की जो बात होती है, जो वो बोलते हैं ना वो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं या यौन संबंध रखने में तकलीफ हो जाती है, ऐसी बात एकदम गलत है। उस यौन संबंध रखने में कोई तकलीफ नहीं रहता है। दूसरी बात है कि कई मर्द को इसकी चिंता लगी रहती है, लेकिन ये बात है ही नहीं और इससे डरने का कोई मतलब नहीं।
अगर जैसे पहला टीका लग और उसके बाद अगर कोविड हो गया या किसी को भी कोविड है, तो कितने दिन या कितने महीने बाद उसको टीका वो लगा सकता है?
दोनों में 90 दिन बोलते हैं, आज की दिन बोल रहे हैं 90 दिन, तो करीब करीब आप कितना हो गया है ना,
3 महीने,
3 महीना हो गया, तो 3 महीना के बाद लगाने की बात होती है। एक चीज है कि दूसरा बार माने कि संक्रमण होने के पहले, इसके बाद संक्रमण हो गया तो 90 दिन के बाद दूसरा डोज लगा सकते हैं। वैसे आपको संक्रमण हो गया आप लगाने के लिए वेट कर रहे थे तब भी 90 दिन के बाद आप लगा सकते हैं। उसके पहले लगाने से क्या होगा, ज्यादातर समस्या कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक दूसरा डोज जैसा एक्ट करेगा, लाभ ज्यादा है अगर आप दिन देखकर करोगे, और कभी कभी दुष्प्रभाव थोड़ा पहले के जो हल्का दुष्प्रभाव है थोड़ा ज्यादा चलेगा अगर तुरंत लगा लिया। इसीलिए बोलते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, आप ऐसे भी कर लो या वैसे भी कर लो, जल्दी लगा लो या देर कर दो, उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। और मेरे समझ में अगर आपको बीमार संक्रमण हो गया था और उसमें बुखार और समस्याएं थी, अगर आपका कोई लक्षण ही नहीं था तो दूसरी बात है, और पॉजिटिव थे तो दूसरी बात है, लेकिन अगर लक्षण था सारा और आप संक्रमित थे तो उसके 90 दिन के बाद आप एक बार डोज लगाने से भी आपका पूरा काम बन जाता है। लेकिन आज की प्रक्रिया जो है, आप सरकारी जो आज की प्रोटोकॉल जो है, उसमें दूसरा डोज भी लगा लेना चाहिए और उचित है कि हम उसी को मान के चले, क्योंकि उससे नुकसान नहीं है, उसको हमें ज्यादा मदद है।
ऐसे कोई समूह है जिनको टीका नहीं लगाना चाहिए, जो जिनको बीपी, शुगर, एनसीडी का कुछ हो, उनको, उनके लिए कोई रोक टोक है क्या?
जिसको बीपी की समस्या है, रक्तचाप बोलते हैं, बीपी की समस्या है, और जिसको शक्कर की, डायबिटीज की समस्या है, उसे लगाना बहुत जरूरी है, बाकी लोगों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादा आसानी से बीमार पड़ते हैं, और अगर वो बीमार पड़ गए हैं तो उस पर मौत की संभावना ज्यादा होती है, गंभीर बीमारी की संभावना ज्यादा होती है, और इसीलिए कोई लगाए या ना लगाए, इन लोग लगाना बहुत जरूरी बात है। ये ऐसी कई सारे जो बोलते हैं इसके साथ मिला हुआ बीमारियां हैं, क्योंकि हमें फेफड़े में आस्मा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या एपिलेप्सी है, इस तरह की कोई भी कई बीमारियों में ये टीका लगाना बहुत जरूरी है। इसी सिचुएशन में लगाने में आप अपने डॉक्टर से पूछ लो, और हो सके नहीं लगाने बताएंगे। जब आप कैंसर के ट्रीटमेंट में आप ऐसी दवाइयां ले रहे हो जो आपकी प्रतिरोधक शक्ति को बहुत कम कर देता है, तब आप अगर ये दवाई टीका लगाओगे तो दुष्प्रभाव तो नहीं होता है, लेकिन इसका जो असर होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, वो ही नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी प्रतिरोधक शक्ति बनने का ताकत है उसको कैंसर की दवाइयां ने रोक लगा है। तो वो क्या करें, जब तक वो दवाइयां ले रहे हैं, वैक्सीन ना ले, जब वो दवाइयां लेना रोक गए और या कम हो गए तब ये ले सकते हैं। और ये इसमें जरूरी बात है कि उनके लिए इसे थोड़ा हार्ट के सोच सकते हैं, कि बाकी लोगों के लिए हम नहीं सोचने की जरूरत है। जिसका प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम है वो इसे अपने डॉक्टर से पूछ के ले, फिर मैं बोल रहा हूँ उसमें दुष्प्रभाव ज्यादा नहीं है, लेकिन हो सके जो आप प्रभाव उसमें आप खोज में हो वो ना मिले।
तो एक और प्रश्न है कि गर्भवती महिला और जो अभी लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिला रही हैं, ये दोनों जो कैटेगरी है, उनको क्या टीका लग सकता है क्या?
आज के दिन में गर्भवती माँ को ना लगाने का ही सलाह है, लेकिन लैक्टेटिंग माँ को लगा सकते हैं, ये सलाह है। और ये बात इसलिए नहीं कि दुष्प्रभाव है, लेकिन ये बात है कि इसमें आप उतना काफी जांच हुआ नहीं है, अब ये आपको हमें देखने की जरूरत है, दोबारा भी हम इसके जांच करना है, हो सके आप इसमें जानकारी आ जाएगी और जो सलाह दिया जा रहा है वो बदल जाएगा, लेकिन आज के दिन में थोड़ा इंतजार कर लेना, गर्भ के बाद ही लगाना उचित है या उसके पहले लगाने से ठीक है, लेकिन उसके समय लगाने में आप सोच सकते हो देर कर सकते। दूध द्वारा अगर फैल भी गया ये प्रतिरोधक शक्ति तो बुरा नहीं हुआ है ना, इसलिए कोई समस्या नहीं है, और उससे ज्यादा फैलता ज्यादा भी नहीं, और वैसे भी बच्चों जो है उनको ये बीमारी होता ज्यादा नहीं, तो इसलिए दो कारण है वो, इसलिए आप अगर बाकी दूध बच्चे पी रहे हैं तो ये कारण नहीं हुआ माँ को टीकाकरण लगाने। अब बच्चों के लिए तो टीका आज के दिन नहीं लगता है, 18 साल से कम कोई बच्चे को अभी हम टीका नहीं लगाते हैं, और इसीलिए अभी वो बात तो आती नहीं है, इसलिए हम माँ के लिए लगा सकते हैं।
एक प्रश्न है कि क्या ऐसा संभव है कि वैक्सीन जो वायरस में जो बदलाव हो रहे हैं उसके कारण वैक्सीन इनफेक्टिव या उतनी कारगर नहीं हो पा रही है, क्या ऐसा संभव है?
संभव तो है, लेकिन आज तक हुआ नहीं है, ये खुशी की बात है। और इसकी जांच में और इसकी निगरानी में सरकार को रहना है और विज्ञान की दुनिया जो है वो सब इसकी निगरानी में लगा हुआ है। और जितना जल्दी इस संक्रमण को, इस प्रकोप को, इस महामारी को हम खत्म करते हैं उतना जल्दी हम उस खतरा से हम बच सकते हैं, लेकिन है और हो सके कि और बदल सकता है।
तो एक लास्ट प्रश्न था टीकाकरण से संबंधित, टीकाकरण के बाद कितने दिन तक आराम करने की जरूरत है?
मैंने लिखित सरकारी गाइडलाइन तो नहीं देखा है, लेकिन एक चीज है कि क्योंकि बुखार पहले दो दिन में ज्यादा आता है और तीसरा दिन भी थोड़ा थकावट रहता है, बदन दर्द रहता है और जहां सुई लगाना जहां लगाना उस जगह में भी थोड़ा हाथ ऐसी करने में दिक्कत होती है, तो इस कारण दो या तीन दिन आराम ठीक रहता है। बट कई लोग काम में चले जाए, बहुत थकावट की काम नहीं है और बाकी दुष्प्रभाव नहीं है तो आप जा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उचित है कि उस दिन और उसका अगला दिन आप आराम कर लें।
प्लीज रेट आवर पॉडकास्ट एंड लीव अ कमेंट इफ यू लाइक इट। Underreported and underrepresented stories can become mainstream only if it reaches more people. So please support us by visiting our contributing page on our website sunoindia.in or follow us on Facebook, Twitter or Instagram.